प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता मेहमान हैं चरडोंगरी पिपरिया के कमलकांत गुप्ता और इनसे बातचीत कर रही हैं सुमेधा अग्रश्री।
आज पर रेडियो सुनने वाले मैं अपने सभी श्रोता साथियों को
जी
अपनी ओर से प्यार भरा नमस्कार।
सब श्रोताओं की ओर से आपको भी नमस्कार, हमारे सारे साथियों की ओर से आपको नमस्कार। जी कमलकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे सप्ताह के श्रोता हैं इस बार। कमल जी, असल में जैसे होता है ना, किसी शहर की कोई पहचान हो जाती है, तो जो रेडियो के श्रोता है उनमें एक आपकी अच्छी खासी पहचान है, तो हम तो आपको सुनते रहते हैं और आपकी फरमाइशें आती रहती हैं, पर अपने बारे में कुछ बताइए हमारे बाकी सुनने वालों को।
मैं जहाँ रहता हूँ पिपरिया जिला के गोदाम में, और हर शहर की अपनी कुछ खासियत होती है, तो मेरा शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन नगर पंचायत जरूर है। यहाँ जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है, गाँव में अपने तहसील ऑफिस है, कॉलेज है, नगर पंचायत है, ये सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ को लोगों को मिल रही है। मैडम
आप खुद क्या करते हैं कमलकांत जी?
मैं मैडम अभी वर्तमान में मैं फोटोकॉपी और स्टेशनरी की दुकान है, और जब उससे फुर्सत मिल जाती है तो मैं खेती की ओर भी काम करता हूँ।
अच्छा, तो पारंपरिक खेती करते हैं या कुछ उसमें बदलाव लाया है आपने?
अब हमारा जिला जो है मैडम गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है।
बिल्कुल,
क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे यहाँ दो शक्कर की फैक्ट्री खुलवा दी है, एक कवर्धा विकास खंड में और दूसरा पंडरिया विकास खंड में, तो हम किसानों को गन्ना बोने में सहूलियत है, उससे हमको नगद फसल के रूप में कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं।
अच्छा, तो आप भी अपने पूरे खेत में गन्ना ही उगाते हैं?
अभी दो फसलें हुई है, कुछ खेतों में हमने धान और कुछ में गन्ना।
अच्छा, तो कमल जी हम उनसे बातें करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी पसंद का गीत भी सुनेंगे, तो गीतों का सिलसिला भी चलते रहना चाहिए। अपनी पसंद के गीत बताइए हमें।
मेरा पहला पसंद मैडम एक तो सावन भादो का महीना चल रहा है, और किशोर कुमार जी की आवाज में प्यारा सा गीत है सावन भादो का, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा।
अरे वाह, आपको गाने का शौक है थोड़ा थोड़ा लगता है?
बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप अपनी पसंद का गीत गुनगुना कर हमें बताइए, हम आपको सुनवाते हैं।
जी जरूर, आप कह रहे तो मैं जरूर अपने श्रोताओं के लिए और आपके लिए अरबा बुलवा के जरूर सुनवाना चाहूंगा।
जी
जी, सुनिए ये गीत। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
वाह वाह।
मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े बिजुरी बन कर गगन पे चमकी बीते समय
आपको दुकान से फुर्सत मिलती है तो आप खेती भी करते हैं। इन दिनों हमारी सरकार भी बहुत जोर दे रही है इस बात पर कि रासायनिक खेती को थोड़ा किनारे करके ऑर्गेनिक खेती की जाए, तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कैसे इस
ये सरकार की सोच बहुत लेट से मतलब देर कर दी, क्योंकि जैविक खाद इसलिए नहीं मिल पा रहे मैडम कि लोगों ने पशु पालना छोड़ दिया है। जैविक खाद मिलते हैं जानवरों से, जो हम अपन घर में जो गाय दर रखते थे, परंपरा का जो खेती होती थी पहले, अब वो चीज मिल नहीं रहा है। लोग अंधाधुंध मतलब रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेती हमारा जहरीला हो गया है मैडम।
लेकिन ये भी है कमलकांत जी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी।
जी जी, लेकिन अभी सरकार की एक अच्छी शुरुआत है नरवा गरवा गुरवा वाली, इससे सरकार की जो योजना जो चल रही है अभी जो हुआ है इसका रिजल्ट 2-4-5 सालों में मिला है मैडम। उतना खाद बनाने में, चूंकि हमने अंधाधुंध उपयोग शुरू किया है ना रासायनिक खाद का, और उसकी पूर्ति के लिए गोबर की खाद और जो मिट्टी से जो केचुआ खाद बनाते हैं उसका व्यवस्था कर पाना भी थोड़ा असंभव सा लगता है मैडम। लेकिन फिर भी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार को, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया है किसानों के हित में।
तो आपके एरिया में कैसी है इसकी पहल, नरवा गरवा गुरवा बारी, क्या आपके आसपास कंपोस्ट खाद ऐसी मिल जाती है जल्दी?
बिल्कुल, मैं खुद इस बार मुझे जब रासायनिक खाद लेने में अपने सोसाइटी गया तो इस बार कंपलसरी कर दिया गया है मैडम।
अच्छा।
कि आपको इसके साथ जैविक खाद भी लेने हैं तो मुझे 1 क्विंटल 80 किलो यानी 6 बोरी 30-30 किलो का मुझे लेना पड़ा, और मैंने अपनी खेती में उपयोग भी किया और उससे मेरी खेती मुझे पहले से कुछ बेहतर लगा।
अच्छा, उसका कुछ नतीजा निकल रहा है मतलब?
बिल्कुल, उस खाद को डालने से सबसे बड़ा फायदा यह है मैडम कि वो जमीन जो है ना नमी बनाए रखता है और उसे फसलें साफ सुथरा होता है और जहर युक्त नहीं होता, वो उसको खाने से सेहत को भी ज्यादा नुकसान नहीं है।
अच्छा कमलकांत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आप तो खेती से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये जो फसल चक्र है हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में धान ही धान बोया जाता है, बहुत हुआ तो फिर धान के बाद हम थोड़ा सा चना या गेहूँ डाल लेते हैं, तो लेकिन उससे धरती की उर्वरता पर भी फर्क पड़ता है, तो ये कैसा फसल चक्र रखना चाहिए हमको अपने इलाके के हिसाब से?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, फसल चक्र जो कॉन्सेप्ट है कृषि विभाग का वो सबसे बेहतर है, वो इसलिए अगर हम लगातार कोई फसल होए तो उस जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे मैं लगातार चना बोया गेहूं बोया तो उसको मुझे हर 2 साल या 3 साल में मुझे दूसरा फसल लेना चाहिए। जैसे मैंने गन्ना बो दिया उस खेत में, उससे फायदा है, उससे जो पत्ती वगैरह है और जो तने वगैरह है जो जड़ है उससे उस जमीन को ना एक नई खाद मिलता है। इसलिए हम किसानों को ना मैं सबसे पहले सलाह देना चाहूंगा कि फसल चक्र तो करे ताकि हमारी खेत उर्वरा शक्ति बनी रहे।
तो आप ऐसा कुछ अप्लाई कर पाते हैं अपने खेत में?
बिल्कुल, मैंने अभी खेत को मैंने मैडम जो वर्षों से करीब ऐसे पड़ा था अनुपयोगी था, उसको मैंने ट्रैक्टर से और मतलब डोजर से उसको ठीक कराया जेसीबी से। उस खेत में आज मैं 2 साल से लगातार अभी फसल ले रहा हूँ। अब मैं वहाँ तो नहीं हूँ लेकिन आपको बता देता, उस खेत में इतना अच्छा फसल है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको।
अरे वाह। तो अब कमलकांत जी, खुशी की बात पर कि एक बंजर जमीन को भी आपने उपजाऊ बना लिया, एक अच्छा सा गीत हमें बताइए।
नील गगन पे उड़ते बादल गीत खानदान पिक्चर का है।
हाँ,
और संबंधित ये गीत मुझे बेहद पसंद है और मेरी पसंद भी, मुझे और अर्पा के सारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं मैडम जी।
बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको ये गीत सुनवाएंगे, ये वैसे भी खेतों से जुड़ा हुआ गीत है।
नील गगन पे उड़ते बादल गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा।
नील गगन पर उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तू खा।
बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी।
झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा।
नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता।
छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तू खा।
नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
कमलकांत जी अपने घर परिवार के बारे में बताइए।
घर में मैडम मेरे माता पिताजी 8 साल पहले गुजर गए इस दुनिया से, और माता जी मेरी करीब करीब 7 महीना, जिनके भी बरसी भी नहीं हुए, उनका बरसी मार्च में होने को है। और मेरा एक ही बच्चा है जिनका आप नाम हमेशा लेती हैं अर्पा रेडियो से, रिमझिम गुप्ता, उसका दूसरा नाम छिप्रा गुप्ता है।
मतलब
मेरा छोटा सा परिवार है मैम।
जी जी, रेडियो से आपका आपके परिवार का काफी पुराना जुड़ाव है।
जी बिल्कुल, मैं जैसे ही मैं मैट्रिक पढ़ के निकला हायर सेकेंडरी, उसमें 11+3 यानी 11 चलता था मैडम, उस समय मैं 11 और पास किया हूँ 1986-87 में। जैसे मैं पास करके निकला तो मैं मेरा रुझान रेडियो की हो गया, और मैं लगातार उस समय से जो रेडियो से जुड़ा हूँ, जो सिलसिला आज तक बना हुआ है।
तो ऐसी क्या चीज है कमलकांत जी जो आपको अर्पा रेडियो से या रेडियो से बांध के रखती है आपको?
बहुत अच्छा सवाल किया मैडम, मैं आपको यही सवाल का इंतजार था मुझे, जिसके जवाब देने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैडम मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रेडियो से तो मैं गीत संगीत ही नहीं मिलता, रेडियो ने मुझे इस क्षेत्र का ना एक अच्छा वक्ता बना दिया है। रेडियो ने मुझे वो चीज दिया है, हर श्रोताओं को अपनी अपनी चीज मिला है रेडियो से, लेकिन मुझे जो चीज मिला आप बताना चाहूंगा, मैं इस क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम होता है आसपास में, लोग मुझे उस मंच का संचालन एंकरिंग करने के लिए मुझे जरूर मौका दिया जाता है, जिससे मैं रेडियो का बहुत आभारी हूँ कि रेडियो ने मुझे एक अच्छा मन संचालन का कुशल वक्ता बना दिया है।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये रेडियो का ये एक जो फायदा है वो हमको वाकई नया सा लग रहा है सुनने में, कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम मनोरंजन के लिए रेडियो सुनते हैं, कोई कहता है हम टाइम पास के लिए रेडियो सुनते हैं, लेकिन आपने जो फायदा बताया ये तो वाकई एक बहुत बड़ी बात है।
और मैम रेडियो में वही बात बोली जाए, वही बात कही जाती है, ये एकदम सच्चे हो, जो 100% खरा सोना की तरह हो। उनको करोड़ों सुनने वाले इस देश में, कोई अपना नाम सुनने के लिए रेडियो नहीं सुनते, इस देश के करोड़ों लोग रेडियो को सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि उसकी विश्वसनीयता पे आँच ना है। रेडियो ने जो बता दिया वो सच्ची सच्ची खबरें होती है, ये मुझे मतलब रेडियो से मिला मैडम।
बिल्कुल बिल्कुल कमलकांत जी, तो आपके शौक और क्या क्या हैं फिर?
मैं, मुझे तो मेरा शौक पर्यटन है, और भारत के जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है उसका दर्शन करना मेरे प्रिय शौक में रहा है मैडम।
अच्छा, तो आपके काम काज से, खेती से इतना मौका निकल पाता है कि आप दूर दराज?
बिल्कुल मैडम, हम सावन में एक ऐसा, अभी तो कोरोना काल चल रहा है 2 साल से, तो इसमें इस बार हम कहीं नहीं गए, फिर भी अपने आसपास जरूर गए सावन में, लेकिन भारत के जितने बड़े तीर्थ स्थान हैं आप कहें तो मैं नाम भी बता दूं।
अरे बिल्कुल बताइए।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, आज के रामेश्वर और पुरी। मेरा अभी सिर्फ दर्शन के लिए बचा है मैडम, आपका द्वारका नहीं जा पाया हूँ ये कोरोना काल की वजह से, लेकिन भारत के हर बड़े तीर्थ घूमना मेरे शौक में, और अपने परिवारों के साथ घूमता हूँ।
बिल्कुल।
रहा सवाल पर्यटन का, तो पर्यटन में मैंने कन्याकुमारी तक के गया है, ऊटी के भी मैंने दर्शन किया है।
अच्छा,
तो इन सब चीजों को जब मैं करीब से देखता हूँ तो मुझे लगता है प्रकृति के हम बहुत नजदीक है। भारत में ऐसी ऐसी चीजें हैं मैडम कि अगर हम कहीं साल भर भी घूम जाए ना, तभी पूरा भारत देश हमारे लिए बहुत कम पड़ेगा।
बिल्कुल 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 कमलकांत जी, तो ये जो समय हो गया है, एक और गीत सुनने का समय है, हमें बताइए, फिर हम बातें और आगे रखते हैं।
बिल्कुल, मैं आपको नील कमल का एक गीत है, जो मुझे ना एकदम जब सुनता हूँ गीत तो मेरी आँख से आंसू निकल आते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यारे गीत मेरा पसंदीदा गीत रहा है, और रफी साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गीत को गाया है, तो मेरी पसंद के श्रोताओं को, अर्पा परिवार के श्रोताओं को ये गीत जरूर सुनवा दें।
बिल्कुल, हम ये गीत सुनवाते हैं।
तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां है तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है, सामने आ जा एक बार, आ जा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
और कमलकांत जी, गीत से पहले हम जो बात कर रहे थे, आपने बताया कि घूमने फिरने का आपको काफी शौक है। अब जैसे रेडियो सुनकर आपने अपने आप को निखारा और आप एक अच्छे वक्ता बन गए, तो पर्यटक को क्या लाभ देते हैं अपने व्यक्तित्व में? कुछ आप लाभ महसूस करते हैं, कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं अपने व्यक्तित्व में?
लोगों के बीच में ना एक उसका पर्सनालिटी, जो खूबसूरती है, जो रेडियो सुनकर जो बोलने का अंदाज है, जितने भी अनाउंसर हमारे रेडियो जाके साथी हैं, हर का एक अपना अलग स्टाइल है, हर का एक अपना तरीका है। और सबसे मैं अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई चीज सीखूं, वैसे हिंदी लिटरेचर के तो बहुत सारे शब्द हैं, अगर हम पूरे ताउम्र भी पढ़े तो हिंदी लिटरेचर समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो अनाउंसर साथी जो हमारी बात बोलते हैं, वो हर एक शब्द हमारे दिल की गहराई तक छू जाता है।
जी जी, कमलकांत जी, जैसे आप घूमने निकलते हैं, आप भारत के बहुत सारे इलाके आपने घूमे, तो घूमते घूमते आप अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव पाते हैं क्या, कुछ नयापन पाते हैं?
बिल्कुल मैडम, जैसे हम कोई एक नया जगह देखते हैं ना, तो उसको बहुत करीब से ना बारीकी से उसको ना देखते हैं कि यहाँ प्रकृति ने क्या चीज ऐसा दिया है कि लोग उसको निहारने जाते हैं। आप जैसे मैं भी आपको बताया कि ऊटी एक इतना खूबसूरत शहर है तमिलनाडु स्टेट का, तो वहाँ मैंने देखा कि प्रकृति एकदम पहाड़ ऐसे लगता है आसमान की हम हाथ से छू लें।
वैसे कमलकांत जी, कवर्धा भी काफी अच्छी जगह है, हमने देखा वहाँ पर कवर्धा का वो जो एक महल है, छिरका महल ना शायद नाम है उसका।
जी जी, वो आप बहुत अच्छा है, मैं बताना चाहूंगा, आप भोरम देव मंदिर की बात कर रही हैं।
जी बिल्कुल,
और भोरम देव मंदिर हमारे विश्व प्रसिद्ध है, भारत के तीन प्रधानमंत्री वहाँ उस जगह में आकर दर्शन कर चुके हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऐसी खूबसूरत जगह है भोरम देव, जो सातवीं आठवीं शताब्दी का मंदिर, जिनका सीधा सीधा संबंध मैं कहूँ को खजुराहो से है मैडम उसका संबंध। तो और भारत के तीन प्रधानमंत्री उस जगह पे आ चुके हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और आपके मतलब मनमोहन सिंह जी और एक और पी नरसिंह राव जी, ये तीन देश के हमारे प्रधानमंत्री उस जगह को ना दर्शन करके जा चुके हैं।
अच्छा, भोरम देव के पास एक छोटी सी नदी भी बहती है शायद, सकरी नदी क्या?
वो ही हमारे गांव पे निकली। हम खुश नसीब वाले हैं मैडम कि हमारे गांव से वो सकरी नदी जो भोरम देव की ऊंची पहाड़ी से निकली है, जाके अभी वर्तमान में बेनत्र जिला के सरहदी में वो शिवनाथ नदी में मिलता है वो नदी।
अच्छा,
अभी भी कलकल बहती है वो नदी में, अभी भी वो धाराएं बह रही हैं।
तो मतलब आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं आप?
जी, हम तो सतपुड़ा के जो घना जंगल है जो अपन कहते हैं, जस्ट हमारे पीछे में सतपुड़ा का घना जंगल है यानी भोरम देव, उससे हमारा शहर 15 से 17 किलोमीटर दूर है मैडम। और प्रकृति के जब करीब में रहो तो मतलब लगता है कि वाकई में भारत एक शांति प्रिय देश है।
कमलकांत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा है और हम चार
बस मैं थोड़ी देर एक मिनट आपको और बता दूं मैडम, रेडियो श्रोता सम्मेलन जो होता है पूरे भारत के हर बड़े छोटे सम्मेलन में मैंने अभी तक शिरकत की है, और खुद मैंने 2011 में एक रेडियो श्रोता सम्मेलन किया था जिसमें बिलासपुर से 4 आगे साथी मेरे उस आयोजन में आए थे, और मैं दिल्ली भी मुझे जाने का अवसर मिला है रेडियो रूस के प्रोग्राम में, मैं वहां तक के गया। मैं रेडियो को जहां भी सम्मेलन होता है मैं वहां जरूर पहुंचता हूं, और यहां तक 25वीं वर्षगांठ मनाई गई बिलासपुर आकाशवाणी की, उस कार्यक्रम में मेरी पूरी सहभागिता रही है मैडम जी।
मैंने आप शुरू में ही कहा ना कि जैसे कुछ शहरों की पहचान होती है ना, तो आपके नाम से आपका शहर पहचाना जाएगा। हम कितनी बार आपका नाम पढ़ते हैं, कितनी चिट्ठियों में आपका नाम आता है, तो आप तो रेडियो श्रोता उनकी एक पहचान है आप, और आपके पास होकर बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद का एक गीत बताइए हमें।
मुझे फिल्म जाने दुश्मन के एक गीत है, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, ये
अब हमें लगता है कि ये चौथा गाना है और आखिरी गाना है, तो इसे आपको गुनगुना के ही बताना चाहिए।
ठीक है, आप कह रही मैडम श्रोताओं के लिए मैं जरूर। ये गीत रफी और आशा जी की आवाज में है, और आज आशा जी का जन्मदिन है।
अरे वाह,
तो चलिए मैं आशा जी को समर्पित करती हूँ, सुनाता हूँ आपको। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, की मौज बन जा रले गया, की मौज बन जा रले गया ले गया।
तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, वो चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, के मौज बन जा रले गया, के मौज बन जा रले गया ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया,
तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। लिया हो ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया तूने दिल तक तो मेरा ले लिया कि वो क्या बेचारा ले गया कि वो क्या बेचारा ले गया तूने दिल तक तो मेरा ले लिया
मेरे सामने ही कोई बेगाना मेरे सामने ही कोई बेगाना के रूप का नजारा ले गया है के रूप का नजारा ले गया
तू जलता है क्यों रे दीवाने दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने के वो क्या तुम्हारा ले गया है के वो क्या तुम्हारा ले गया
तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां जवानी तेरे किस काम की इसे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की
दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला ये बात नहीं तेरे बस की
आज हुस्न का जलवा दे दे आज हुस्न का जलवा दे दे तो कल से मैं तौबा कर लूं हाय तो कल से मैं तौबा कर लूं
साल 17 संभाला इससे मैंने वो मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं हाय रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं
तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्ख का रंग बन के है तेरे होंठों से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्ख का रंग बन के
तेरे जैसे कोई लुट गए कुंवारे पायल मेरी जब छनके
गोरा रंग न किसी का होए गोरा रंग न किसी का होए के सारा जग बैरी हो जाए है के सारा जग बैरी हो जाए
सारे जग से निपट लूं अकेली अकेली सारे जग से निपट लूं अकेली कि पहले तू जो मेरा हो जाए है कि पहले तू जो मेरा हो जाए छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को वो छोड़ो झगड़े
बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी
हमसे बात करने के लिए नंदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का धन्यवाद एक कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम श्रोताओं को सप्ताह के श्रोता में आने का मौका मिला बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी
जी जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके कमलकांत जी शुक्रिया
धन्यवाद
सप्ताह के श्रोता इस कार्यक्रम में आज आपने पिपरिया चर डोंगरी के अर्पण रेडियो के श्रोता कमलकांत गुप्ता से बातचीत सुनी और इनसे बातचीत की सुमेधा अग्रश्री ने।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।